जानती। आज का सत्र है कर्मों की गुह्य गति, दूसरा भाग। इस संसार के अंदर मनुष्य जो कुछ भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता है अपने कर्मों के हिसाब से, और इसीलिए कर्मों की गति अति गुह्य कही गई है। वास्तव में कर्म कितने प्रकार के हैं? देखा गया है कि संसार के अंदर चार प्रकार के कर्म दर्शाए गए हैं। सर्वप्रथम है श्रेष्ठ कर्म, दूसरे प्रकार के कर्म है अकर्म, तीसरे प्रकार के कर्म है पुण्य कर्म, और चौथे प्रकार के कर्म है विकर्म। अब ये कर्म को समझने के लिए, श्रेष्ठ कर्म यानी एक बीज बोने का कर्म, जिस तरह खेती में एक किसान बीज बोता है, बीज बोना भी कर्म है। उस कर्म, उस बीज की परवरिश करता है, पौधा निकलता है, उस पौधे को भी परवरिश करता है, वृक्ष बनता है और उस वृक्ष के ऊपर एक फल लगता है, वो फल तोड़ के वो खाता है, ये भी कर्म है। बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है, और एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन दोनों कर्मों में कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। बीज बोने का कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि एक बीज से मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है, और वो भी हर सीजन में। लेकिन फल तोड़ के खाना, इसको कहा जाता अकर्म, कि जिस कर्म का दूसरा फल नहीं मिलता है। बीज बोने वाला जो कर्म था उससे फल मिला, इसलिए उसको श्रेष्ठ कर्म कहा गया। लेकिन फल तोड़ के खाया, समाप्त हो गया, संतुष्टि मिली और पूरा हो गया। तो एक कर्म का प्रारंभ है जो श्रेष्ठ है, और एक कर्म का फल जो समाप्त हो जाता या न्यूट्रलाइज हो जाता, वहां पर वो कर्म समाप्त हुआ, निष्क्रिय हो गया, उसका कोई दूसरा फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको अकर्म कहा गया है। तीसरा कर्म जो पुण्य कर्म, यानी मनुष्य जैसे दान करता है और पुण्य मिला उसको थोड़ा बहुत, जैसे बीज बोने वाले कर्म को 100 फल मिल जाता है, इतना पावर वाला नहीं है। पुण्य कर्म माना कुछ दिया और उसके बेट में, उसके बदले में कुछ प्राप्त हो गया, ये पुण्य कर्म। और चौथा है विकर्म, यानी विकृत कर्म या विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, जो बुरे कर्म है या पाप कर्म के खाते में जाता है, ये जिसमें कहा जाए कि उधारी का खाता बहुत, कर्जदार इंसान बन जाता है, इसको कहते हैं विकृत कर्म, विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, विकर्म। तो ये चार प्रकार के कर्म इस संसार में होते हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत को अगर देखा जाए तो कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत 3 वाक्यों के अंदर स्पष्ट किया गया है। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा, ये है कर्म सिद्धांत। और इस कर्म के सिद्धांत के हिसाब से मनुष्य आत्माएं इस जीवन को जीते हैं। जो करेगा यानी वो जो करेगा सो पाएगा, माना हर कर्म की एक प्रतिक्रिया है, और उस प्रतिक्रिया के हिसाब से उसको प्राप्त होता है। जैसा करेगा मन, जैसा मनुष्य ने कर्म किया वैसा ही उसको मिलेगा। यानी वो प्रतिक्रिया भी कैसी होगी कि जो मनुष्य ने जैसा किया वैसा ही उसको फल मिलेगा। वहां कोई ये नहीं होता है कि समझौता नहीं होता है, और जितना किया उतना ही पाएगा। आज हर मनुष्य की इच्छा रहती है मेरे जीवन में ये भी हो वो भी हो, लेकिन अगर किया ही नहीं है तो कहां से प्राप्त होगा। कई बार वो भगवान से भी शिकायत करने लग जाते हैं, मेरे पड़ोसी को तो इतना दे दिया, मुझे क्यों इतना नहीं मिला, तुमने इतना ही किया है तो उतना ही प्राप्त होगा। तो कर्म सिद्धांत जो व्यक्ति अच्छी तरह समझ लेता है, वो इस जीवन के अंदर कम से कम इस तरह के कर्म अपने करना आरंभ करता है तो आगे के जीवनों को संवार लेता है। इसलिए इसको समझना जरूरी है। लेकिन ये कर्म सिद्धांत में अगर देखा जाए कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, तो जैसे खेती बाड़ी में किसान जब बीज बोता है तो कई बातों का ध्यान रखता है, उतना ज्ञान उसको भी है। ठीक इसी तरह इस जीवन रूपी धरनी के अंदर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जैसे जमीन में बीज बोने से पहले जमीन की क्वालिटी को देखा जाता है, ठीक इसी प्रकार हमें भी कर्म के बीज बोने से पहले अपने जीवन की धरनी को अच्छा बनाना है। जीवन की धरनी को श्रेष्ठ बनाना माना चरित्रवान जीवन रूपी धरनी। दूसरा, उसमें बीज बो अच्छे विचारों का, क्योंकि जो अच्छे विचार के बीज बोएंगे वही वैसा उसका फल प्राप्त करेगा। तीसरा, खाद भी डालना होता है तो संयम और नियम की खाद जीवन के अंदर डालनी चाहिए। जितना संयम से जीवन जीते हैं, नियमों से जीवन जीते हैं, उतना वो धरनी में बीज विकसित होता है। फिर उसको धूप भी कितनी देनी चाहिए वो भी किसान ध्यान रखता है। तो धूप है परमात्मा की याद की शक्ति की धूप। जितना हम निरंतर ईश्वर को याद करते जाते हैं तो ईश्वर की शक्ति की धूप भी जैसे उस कर्म के अंदर हमें प्राप्त होती है। फिर उसको जल भी देना है, जल से सींचना भी है, तो ज्ञान अमृत है, तो ज्ञान अमृत से उसको नित्य सींचते चलो। जितना ज्ञान अमृत सुनते जाएंगे, प्राप्त करते जाएंगे, सत्संग के माध्यम से अपनी वृत्तियों को स्वच्छ करते जाएंगे, उतना ये अमृत हमारे कर्मों को भी बहुत सुंदर स्वरूप देने के लिए तत्पर होता है। फिर वायु भी अच्छी चाहिए, तो वायु कौन सी है, तो जैसे घर का माहौल वायु का कार्य करता है। अगर अच्छे संस्कार घर के वायु में है, घर के वातावरण के अंदर है, तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार बनते हैं और वो जीवन रूपी जीवन के अंदर बहुत सुंदर और आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर फल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे संस्कारों का माहौल ये वायु का काम करता है। और फिर जब फल लगता है तो जैसे किसान भी उस फल को बचाने के लिए चिड़ियाओं से उसकी रक्षा करता है या कीड़ा न लग जाए इसका ध्यान रखता है, तो हमारे जीवन के अंदर भी जब अच्छे फल लगने आरंभ होते हैं, उस समय हमें भी ये दो बातों से ध्यान रखना है कि कहीं कीड़ा न लग जाए या कोई चिड़िया उसको खराब न कर दे। तो कीड़ा कौन सा लगता है? अहंकार का कीड़ा। कई बार कई लोगों को अपने अच्छे कर्मों का भी अहंकार आ जाता है, यानी ये कीड़ा लग गया और उस अभिमान में आकर दूसरे के साथ व्यवहार गलत करने लगते हैं, या उसको पक्षी खराब न करते उसका भी ध्यान रखना है, यानी संग का रंग नहीं लगना चाहिए। अक्सर मनुष्य जीवन के अंदर जब बहुत अच्छी उसके जीवन में प्राप्ति होने लगती है तो कई बुरी संगत वाले भी आ जाते हैं, और अगर उस संग के रंग में फंस गए तो जो अच्छी कमाई की हुई है वो सारे व्यर्थ उड़ाना चालू करता है। तो ये पक्षी ने खराब कर दिया ऐसे संग से, इसीलिए संग दोष कहा जाता है। तो संग दोष से अपने आप को बचाना है, न अहंकार रूपी कीड़ा लग जाए या न संग दोष के कोई पक्षी आकर हमारे जीवन को खराब कर दे, और तब जाकर के हमारे जीवन के अंदर प्रसन्नता संतुष्टता के फल का अनुभव कर सकते हैं, और वो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि इतना ध्यान रखना कैसे होगा, तो सिंपल अगर टेक्निक में बताऊं कि हर कर्म करते हुए परमात्मा की स्मृति में आत्म स्वरूप में स्थित होकर के हम कर्म करें, जितना परमात्मा की याद की शक्ति उस कर्म में जाएंगे तो वो कर्म अपने आप स्वतः अच्छा होने लगेगा। तो ये है कर्म की गुह्य गति, जिस गुह्य गति के आधार पर अपने जीवन को सींचना है और सींचते हुए उसको बहुत सुंदर बनाना है। ओम शांति।